अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया हमें ख़ुद को समझने का, ख़ुद को पढ़ने का, अपने ऊपर गौर व फ़िक्र करने का। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम पर्सनालिटी टाइप्स के दूसरे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने इस मौजू पे जो कुछ जाना, सुना, समझा, यकीनन उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? नो योर पर्सनैलिटी टाइप, अपनी शख्सियत को पहचानिए। सवाल पैदा होता है कि क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा? पहली बात यह है कि इसलिए कि हम खुद से बेहतरीन फ़ायदा ले सकें। दूसरी बात है कि अपने सोए हुए अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए उस टैलेंट और उस ख़जाने को डिस्कवर कर सकें जो अभी तक भी हमारी निगाहों से छुपा हुआ है। फिर अगली बात यह है कि अपनी शख्सियत को क्यों पहचाने? इसलिए पहचाने कि हम अपनी कमी बेशियों को दूर कर सकें और अल्लाह ताला ने हमें जो खूबियों के साथ साथ कुछ कमी बेशी की जड़ी बूटियाँ दी हैं उसको उखाड़ सके। यानी तज़किए का अमल करना, तज़किया आपके मेरे लिए तभी मुमकिन है जब हम अपनी चीज़ों को जानते हों। आप किसी भी चीज़ की जब असल जानते हैं तो फिर आप उससे काम भी बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं। फिर इसी तरह नो योर पर्सनैलिटी टाइप का एक और भी हदफ है हमारा। कोई कह सकता है कि हम ये क्या करने बैठ गए, हालांकि जो पिछले सेशन का माशाल्लाह फीडबैक है वो अमेजिंग है, बहुत सा इंजॉय भी किया लोगों ने और उनको फ़ायदा भी हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि हम हर वक्त इंसानों के बीच में रहते हैं। हम जब अपने आप को जानेंगे और हम में से हर एक ही अपने आप को जानेगा, तो जो लोग हर वक्त एक दूसरे के साथ होते हैं, कभी घर में घर के अफराद की सूरत में, कभी कहीं काम करने वालों की सूरत में, कहीं आप साथ पढ़ते हैं, कहीं आप साथ पढ़ाते हैं, कहीं लोग एक दूसरे से काम लेते हैं, कोई आजिर है, कोई अजीर है, कोई मेल कॉर्नर है तो कोई उसके वर्कर्स हैं, तो इसी तरह जब हर बंदा अपने अपने आप को जान चुका होता है तो वह अपने इर्द गिर्द वालों के लिए खैर और खुशी का ज़रिया भी बनता है। फिर इसी से इंशाल्लाह इंसान की ज़िंदगी में वो खैर आने लगती है कि जिसके साथ वो अपने आप को दूसरों के लिए काबिले अमल और एक खूबसूरत चीज़ बनाता है। और जितना ज़्यादा हम अपने आप को जानते जाएंगे, हम अपना डैमेज कंट्रोल भी करेंगे। यानी अगली रीज़न जो हमारे पास है ख़ुद को डिस्कवर करने की, वो क्या है कि हमने अपना डैमेज कंट्रोल करना है। वो क्या होता है? आप देखिए कि एक कतरा कतरा टूटी में से पानी का गिरता रहता है और अक्सर हमें उसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन जब हमें उसका एहसास शुरू हो जाता है तो फिर हम अल्लाह की रहमत से उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बावजूद इसके कि इंसान अल्लाह ताला का एक मास्टरपीस है, अल्लाह ने उसको जो खूबियाँ दी हैं, लेकिन कभी कभी इंसान अपने इर्द गिर्द अपना ही नुकसान कर रहा होता है और थोड़ा सा अगर उसको पता लग जाए कि वो अपनी ज़ात को किस तरीके से ज़ाया कर रहा है तो वो डैमेज कंट्रोल भी होता है। कितने फ़ायदे हो गए अभी तक आपने गिने, सोचे आपने? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको मुझे इस मौजू की खूबसूरती का नहीं पता होगा, हम इसको नहीं जान सकते। और फिर एक और वजह यह है अपनी पर्सनालिटी को जानने की कि अल्लाह ने कुरान पाक में जो बात फरमा दी, कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलती ही फरब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। ऐ नबी, इन लोगों से कह दीजिए कि हर एक अपने तरीके पर अमल कर रहा है, अब ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधी राह पर कौन है। बनी इसराइल 84 में अल्लाह ताला ने जो ये शाकिला की बात की, तो मैं और आप अपनी शाकिला को जान ही नहीं सकते जब तक हम अपनी पर्सनालिटी को न जान सकें। कभी आप डेथ बेड पे किसी शख्स को दुनिया से जाते हुए हसरत करते तो देखिए कैसे उस वक़्त लोग एक तो दीन की निगाह से कहते हैं ना कि एक और मौका मिले तो हम ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम कर लें, एक दुनियावी लिहाज से भी इंसान का रिग्रेट होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी किन चीज़ों में लगा दी। याद रखिए कि हमेशा हम गलत काम नहीं कर रहे होते, अक्सर हम सही काम कर रहे होते हैं लेकिन गैर मुनासिब काम कर रहे होते हैं। मसलन अगर खिलौने बच्चे को दिए जाएं तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर एक बड़ा खिलौनों से खेलने लग जाए तो नुकसान होगा ना। छुरी बहुत काम की चीज़ है जबकि वो माँ के हाथ में हो और वो सारा दिन किचन में उसमें कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा ले, लेकिन यही छुरी जब एक बच्चे के हाथ में दे दी जाती है तो फिर आप सब जानते हैं कि उससे क्या नुकसान होता है। बिल्कुल इसी तरह से एक इंसान जब गलत चीज़ों में नहीं पड़ा होता, सही चीज़ों में पड़ा हुआ है लेकिन कम सही पे पड़ा होता है, गैर मुनासिब वक्त पे, बस इस वक्त का सही इस्तेमाल क्या है आपका मेरा? इस वक्त अपने आप को जानने की कोशिश करना, इस वक्त कोई अंदर बैठ के कुरान पढ़ता रहे, कुरान पढ़ रहा हूँ, सवाब होगा, वो तो होगा, लेकिन वो तो किसी और वक्त भी हो सकता है। कोई इस वक्त जाकर अंदर नफिल शुरू कर दे, नफिल तो इस वक्त भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो याद रखिए कि हर नेकी से, हर खैर के काम से हमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब हम अपने बारे में संजीदगी के साथ कोशिश करते हैं, सोचते हैं, आपको पता लगता है। और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसे लगता है कि इस मौजू को पढ़ने की, पढ़ाने की, सुनने समझने की क्या है कि ये आपकी आपसे मोहब्बत का एक अमली इजहार है। आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं ना, आप उसके बारे में जानते हैं। चाहे वो कोई खाना है तो आप जानने लग जाएंगे इस खाने का जिस्म पे क्या असर होता है, कोई रेसिपी है तो आप उसको पढ़कर वैसा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह किसी इंसान से अगर हमारी मोहब्बत होती है तो हम उस इंसान के बारे में जानने लग जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स आप देखिए कि हम अपने बारे में बहुत कम जानते हैं। और लिख लीजिए, उर्दू बोलने वालों पे ही कयास करते हुए कहूँगी, कल्चरली यानी बाय कल्चर, या आप कह लीजिए कि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है कि हम अपने बारे में बहुत कम केयर करते हैं, बहुत कम जानते हैं। मतलब अपने खाने का ख्याल नहीं रखते, बस वो खा लेते हैं जो कि मिल रहा होता है। हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, हम और बहुत कुछ नहीं करते, और हमें अपने से ज़्यादा दूसरों के हालात की फ़िक्र होती है। तो ये इस वक्त आपका मेरा इस मौजू पे सुनना इस बात की भी दलील है कि हमने हकीकत में खुद से मोहब्बत करनी है। तो फिर अगला सवाल यह है कि मैं खुद से मोहब्बत क्यों करूं? इसलिए कि मैंने अपने आप को अल्लाह के सामने जवाबदेह महसूस करना है। आपको कोई बहुत ही कीमती मशीन ला दे और आप उसमें जाके पानी भर दें, तो क्या वो देने वाला नहीं पूछेगा कि आपने इसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बहुत बड़ी वजह इस मौजू पे मज़ीद सुनने की, मज़ीद गौर व फिक्र की, और वो क्या है कि कल जब अल्लाह के सामने जाऊंगी तो क्या पेश करूंगी, कि अल्लाह आप कितने प्यार से बनाई हुई मशीन को मैंने इस तरह मिसयूज़ किया। और उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए खुद को तैयार करना है। फिर ज़रा सा अभी तक जितना कुछ हम पढ़ चुके हैं उसका खुलासा कर लेते हैं। हम इंशाल्लाह 34 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी कहेंगे, या आप कह लीजिए कि पर्सनैलिटी के 34 डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, कुछ एंगल देखेंगे। यानी हमारी शख्सियत में कभी एक चीज़ डोमिनेंट होती है, कभी दो। तो अभी तक जो हमने देखा है उसमें सबसे पहले थे अचीवर्स, मजीद की तड़प रखने वाले लोग। ये हर वक्त कुछ और लेने, कुछ और पाने के शौक में होते हैं। फिर इसी तरह हमने अमल के लिए बेचैन लोग देखे थे, एक्टिविस्ट्स कह लीजिए, बहुत ही एक्टिव होते हैं, सोचते कम हैं, करते ज़्यादा हैं, कमिट कम करते हैं, लेकिन जिसको कहें कि करके जो दिखाते हैं वो इससे ज़्यादा होता है। फिर तीसरी किस्म के हमने लोग देखे थे कि जो लचकदार भी थे और मकबूलियत रखने वाले थे, यानी एक्सेप्टेंट थे। ये वो लोग होते हैं जो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और इनको लोग बहुत पसंद करते हैं। याद रखिए, सबसे खूबसूरत पर्सनालिटी अगर अभी तक जो भी हमने देखी है ना, तो वो लचक वाले हैं। फितरत का भी असूल है बी फ्लेक्सिबल, लेकिन किस चीज़ में फ्लेक्सिबल? लोगों से मामला करने में। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हमने जो डिफरेंट चीज़ें पढ़ी उनमें एक एनालिटिकल लोग पढ़े, मंतकी तजिया करने वाले लोग, जो हर वक्त समझिए कि मंतक की ज़ुबान से बात करते हैं। और फिर इसके बाद तरतीब और तंजीम पसंद शख्सियात देखी हमने, कि जो वाकई बहुत ऑर्गेनाइज भी हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर डिसिप्लिन होता है। फिर हमने पुरयकीन शख्सियात देखी कि फुल ऑफ बिलीफ हैं, ये भी एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है। अगर आप वाकई लीडरशिप के लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में यकीन पेश करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा लेना पड़ेगा। फिर सर हमने एक हाकिमाना शख्सियत देखी, कमांडिंग स्लोक, ये बुरे नहीं होते, सिर्फ ये होता है कि कभी कभी अपनी कमांड को बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि एक्स्ट्राऑर्डनरी सख्ती के साथ पेश कर देते हैं। हालांकि ऐसे ही लोगों ने दुनिया में हुक्मरानियाँ की हैं, मसलन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो हाकिमाना पर्सनैलिटी थी। फिर इस तरह हमने देखा था इबलाग की माहिर, यानी वो लोग जो बहुत ही कम्युनिकेटिंग होते हैं, जिनको लोगों से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत भी होती है। और इसी तरह हमने कुछ और शख्सियात देखी थी। आज हम जिसके बारे में डिटेल से बात पहले करेंगे वो हैं डिवेलपर्स, यानी 13 टाइप्स के बाद अब 14 टाइप हमारे सामने हैं, और ये है तामीरी शख्सियात। ये वो शख्सियात होती हैं कि जो नाम से ही जाहिर है कि बड़े तामीरी होते हैं, बहुत ही कॉन्क्रीट काम करने वाले लोग होते हैं। ये वो लोग हैं कि दूसरों में छुपी हुई खूबियां तलाश कर लेते हैं। इनके नज़दीक कोई भी फर्द बेहतरीन नहीं होता, बल्कि इसके बरखिलाफ़ हर शख्स के अंदर मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है, और इन खूबियों को परवान चढ़ाया जाता है। मैं दोबारा ये जुमला बोलूँगी, फिर आप ढूंढिए कि आपके इर्द गिर्द कौन है ऐसा। कहीं आपके माँ बाप तामीरी शख्सियत के मालिक तो नहीं है, आपके उस्ताद तो नहीं है जो डिवेलपर्स हैं, अभी तक आपसे वो मुतमईन नहीं हो रहे, उनको हमेशा आपके अंदर मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश नहीं नज़र आती। फिर आप देखिए कि तामीरी शख्सियत रखने वाले लोगों की तरफ बहुत झुकाव रखते हैं, ये लोग चाहते हैं कि दूसरे कामयाब हों, चुनाचे वो अपनी हद तक पूरी तरह कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए आगे बढ़ने के नए मौके पेश किए जाएं। और याद रखिए कि ये लोग जांचते हैं कि कौन से लोग आगे बढ़ते हैं और कौन से आगे नहीं बढ़ पा रहे, और जब इनको अपने साथियों के अंदर कुछ कमी पेशी दिखती है तो ये बहुत जलते कुड़ते भी हैं, और इनको ऐसे लगता है कि जो ये आगे नहीं बढ़ रहे तो जो इनकी रुकावटें हैं इनको दूर किया जाए, इनको आगे बढ़ने के अंदर मदद की जाए। और याद रखिए कि तामीरी शख्सियत रखने वालों को दूसरों की मदद करके और इनको आगे बढ़ाकर रहनुमाई इनकी करके खुशी महसूस होती है। और ये भी याद रखिए कि ऐसे लोग अपनी खूबियों को जानकर आगे बढ़ते हैं तो इन्हें भी कुव्वत और तमानियत मिलती है, इनके दिल में खुशी होती है। और न जाने क्यों 13 पढ़ाने के बाद जो 14वीं पे मेरा रुक कर कहने को दिल करता है कि मैं अपनी तबीयत में ये इंक्लाइनेशन पाती हूँ, हर वक्त लोगों के बीच में हूँ, माशाल्लाह 20 साल से साथ काम भी हैं करने वाले हैं और 20 दिन के बेबीज भी हैं, मुझे अपने हर साथी के अंदर एक खूबी और उनकी कोशिश और लगन दिखती है, और लेकिन हर वक्त मैं उनके अंदर और बेहतरी के लिए कोशिश करती हूँ। यानी मेरा ख्याल है कि मैं वो माँ हूँ कि जो कभी भी आखिरी दिन तक अपने बच्चों से पूरी सेटिस्फाइड ना हो। वजह क्या है कि मुझे पता है वो और कर सकते हैं, लेकिन इतना करके क्यों ठहर गए। मतलब आपका बच्चा है वो 5 किलो का एक डिब्बा उठाकर अगर किचन से लेकर बाहर तक छोड़ आता है तो आप क्या सोचते हैं कि हाय बेचारा, माएँ तरस खाती हैं, हाय मेरे बच्चे ने 5 किलो का, हाय मेरे बच्चे ने रोज़ा रख लिया, हाय छोटा सा मुंह निकल आया, हाय बेचारा, हाय बेचारा। तो मैं कहूँगी नहीं, मेरा ख्याल है कि ये 5.5 भी उठा सकता था, अच्छा मैं अगली दफ़ा इसको 5.25 दूंगी। यानी ऐसा एक खू है, एक अपने अंदर तबीयत में ये चीज़ महसूस होती है कि जो लोग साथ हों वो दी बेटर से दी बेस्ट तक पहुंच जाए, गुड बेटर एंड दी बेस्ट। और मुझे ऐसे लगता है कि हर एक में ना गुंजाइश होती है। ये आप सबको एक पेरेंटिंग का भी असूल बता रही हूँ कि बच्चों को कभी अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, ओवर एस्टिमेट भी ना कीजिए, लेकिन आप देखिए कि छोटी छोटी नेकियों पे आप अपने बच्चों पे तरस खाने लग जाती हैं, नहीं नहीं ये फजर पे नहीं उठ सकता, फिर इसने स्कूल भी जाना है, नहीं अब फर्ज रोज़े रख लिए हैं तो अब ये शवाल के रोज़े नहीं रख सकता, नहीं ये फजर पे तो उठता है लेकिन उससे 15 मिनट पहले तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकता। मैं कभी भी इस चीज़ पे माओं के साथ इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि ये माएँ होती हैं जिन्होंने बच्चों को जगाना होता है। आप देखिए कि हमारी सहाबियात सारी तामीरी शख्सियत की मांग लिखती, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रोज़े रखाती थी, अपने बच्चों के दिल में जज्बा मोहब्बत डालती थी अल्लाह के नबी की रसूल की। तो मुझे लगता है कि तामीरी शख्सियत यानी ये डिवेलपर्स हैं, अगर आपकी किसी की ज़िंदगी में कोई एक ऐसी शख्सियत आ जाए ये आपके ऊपर अल्लाह ताला का एक इनाम है। पहली माएँ अपने बच्चों को एक किस्म की, जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं ना तेरा बेड़ा तर्ज है, देखने में ये एक डांट या बददुआ लगती है लेकिन ये दुआ है। बेड़ा कहते हैं कश्ती को तरने को तो तैरना, यानी तेरी कश्ती तैरने लगे। हमारे सलाफ की माएँ अपने बच्चों को क्या कहती थी आप में से किसी को पता? वो कहती थी तुम्हें किसी मुहद्दिस के हाथ लगे। ये तामीरी माएँ होती हैं, ये तामीरी बाप क्या, यानी मुहद्दिस जिस तरह बंदे की जरा व तादील करते हैं, उसको छान पटक के रख देते हैं। मुराद क्या था कि तुम्हें ज़िंदगी में कोई ऐसा उस्ताद, कोई मुरब्बी, कोई मुज़क्की दिखे कि जिसके अंदर तेरी एक एक खूबी और तेरी खामी खोले और वो तुझे बेहतरीन तरीके से आगे खोल सके। और आप देख लीजिए जिन लोगों को ऐसे हाथ लग गए वो दुनिया में कभी इमाम बुखारी के नाम पे चमके, कभी इमाम मुस्लिम के नाम पे, इमाम शिमाइल के। अफसोस की बात है आज की माएँ डिवेलपर्स नहीं है। आप सबको इस पे बहुत सोचने की ज़रूरत है। माजरत के साथ आजकल के तो उस्ताद भी डिवेलपर्स नहीं है इल्ला माशाल्लाह। वजह क्या है कि वो थोड़े पे राजी हैं। चलो आज हर वक्त क्या हम पे अपने ऊपर तरस नहीं खाते? दूसरों से तो अच्छी हूँ, इतना तो करती हूँ, फिर अगर मैं ये भी छोड़ दूँ तो क्या कर लेंगे। कभी बंदा मुंह पे बोलता है कभी नहीं बोलता, दिल में आवाज़ें ये आ रही होती हैं कभी कभी ऐसे लोगों के अंदर से। तो याद रखिए कि जिस बंदे से अल्लाह खैर का चाहता है ना इरादा, उसको ऐसे लोग देते हैं। सबसे बड़ी तो इसमें नाम अगर आप लिखे नोन लोगों में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे स्क्रैच से शुरू करके बड़ी बड़ी शख्सियात की तामीर की। आप देखिए कि अबू बकर क्या थे, उमर फारूक क्या थे, उस्मान गनी क्या थे, हज़रत अली तो कल के बच्चे थे आपके हाथों में, हज़रत जैद बिन हारिसा क्या थे, हज़रत अनस बिन मालिक को देखिए, 10 साल की उम्र में ये बच्चा अल्लाह के नबी के पास आता है और कैसे चमका। आप कह सकते हैं कि जो सूरत फ़त्ह के आखिरी रुकू में अल्लाह ने मिसाल दी है ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना माहू, वो तो अल्लाह के रसूल थे लेकिन जो उनके साथ थे लोग उनकी खूबियाँ क्या हैं सबको पता है। मैंने बीसियों बार अपने साथियों के सामने इन आयात को शेयर किया हुआ है। तो वो जो एक खेती तैयार हुई, जो सहाबा की एक फसल लगी, वो अल्लाह के नबी की डिवेलपिंग पर्सनैलिटी थी। अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें डिवेलपर्स चाहिए। आप देखिए ना हमारे यहाँ लफ्ज़ डिवेलपिंग कहाँ आता है, मैं बैक ऑफ द माइंड पे ले जाऊँ तो पहले दौर में कैमरे से तस्वीरें खींचती थी, फिर किधर हैं जी वो फोटोएं कब आ रही हैं, वो डिवेलप होने गई हैं। वो काला सा एक नेगेटिव होता था, उसको किसी स्टूडियो में ले जाकर उसको फिर इधर उधर से कर करा के उसको डेवलप करते थे। और डेवलपिंग किसको कहते हैं, बाज़ दफ़ा टीवी सीरियल के एंड पे आप देखेंगे जी प्रोड्यूसर ये था, डेवलपर ये था, इंसानों के डेवलपर्स तामीरी शख्सियात होती हैं। आज इंसानियत को ऐसे ही इंसानों की ज़रूरत है। वेस्ट ने इस पर बहुत काम किया लेकिन आज हमारे अंदर नहीं हुआ। और याद रखिए कि जो डेवलपर्स होते हैं ना, इनकी एक बहुत बड़ी खूबी क्या है कि चंद छोटे छोटे इकदामात जो दूसरों की नज़रों से बिल्कुल ओझल होते हैं वो इनको नज़र आ जाते हैं। लोग कहते हैं हमें क्यों नहीं ये चीज़ दिखती है? आपको क्यों दिखती है? नहीं ये पहले नहीं थी, आपके सामने पहुंची तो आ गई। नहीं, क्योंकि ये बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं, इनको दूसरों में छुपी हुई छोटी छोटी फितरी खूबियां भी नज़र आ जाती हैं, उनकी सलाहियतें भी दिख जाती हैं और इनकी खामियां भी दिख जाती हैं। देखिए ना आप किसी को भी कहें जाएं ज़रा एक लम्हे के लिए किचन से एक पानी का ग्लास लेके आए, कोई जाता है ग्लास लेकर पानी कहाँ जाता है? बाद में आप पूछें किचन में कितनी खिड़कियाँ थी, किचन में और क्या था भला, तो मेरा ख्याल है एक दो चीज़ों के मोटे मोटे नाम लेके वो बैठ जाएगा कि वहाँ ओवन था, वहाँ सिंक था और दो चार चीज़ें, फ्रिज भी होगी। किसी दूसरे को पूछिए जाइए ज़रा एक ग्लास पानी आप भी लाइए, और जब वो वापस आता है आप कहते हैं बताइए किचन में क्या क्या था, वो 15 चीज़ों के नाम लेता है। और एक तीसरे को आप भेजते हैं जाइए भाई आप भी लेकर आइए, तो आप देखते हैं कि वो 15 नहीं वो 25 चीज़ें बताएगा, बल्कि वो कहेगा फ्लोर पे थोड़ा सा कचरा भी पड़ा हुआ था। एक ही किचन, एक ही दरवाज़ा, एक ही जगह से गए, दो ही आंखें सबकी, फ़र्क किस बात का है? ऑब्जर्वेशन का फ़र्क होता है। शख्सियात कुछ ऐसी होती हैं, कुछ को तो कभी कुछ गलत दिखता ही नहीं, वो कहते सब ठीक है, और फिर उनको खूबियाँ भी नहीं, कुछ को खूबियाँ बहुत दिखती हैं खामियाँ नहीं दिखती, कुछ को खामियाँ पूरी दिखती हैं खूबी नहीं दिखती। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि आपको अगले की खूबी ऐसे दिखे कि क्लिक करें आपके, यस ये है वो बंदा, इसको अब पकड़ना, इसको ग्रूम करना। कोई बात नहीं अभी झाड़ झंकार है ठीक हो जाएगा, अभी क्रूड है ना कोई बात नहीं, इसको ज़रा सा फॉर्म देंगे ये बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, अभी ये सही तरह बोलता नहीं है ना, बात का स्टाइल इसका बड़ा ही झटका सा स्टाइल है, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप उस बंदे के अंदर से कह लीजिए कि एसेंस लेते हैं, बिल्कुल मेरे जहन में इस वक्त लव्स प्रोड्यूसिंग के साथ और डेवलपिंग के साथ एक कायनात की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ का नाम आ रहा है, सोचिए ज़रा क्या होगी, शहद की मक्खी। शी इज़ डिवेलपर, कैसे वो फूल को देख के समझ जाती है कि इसके अंदर साथ लेना है कि नहीं लेना, इस पे से कोई दूसरा गुजर गया कि नहीं गुजर गया, और कैसे वो फिर खूबसूरत तरीके से उनके साथ यानी उनमें से असर लेती हैं। गोया कि आप देखिए कि फूल तो सबके लिए फूल है, कोई फूल चखे तो कड़वा समझ के थूक देगा और कोई कुछ करेगा, लेकिन शहद की मक्खी ने उस फूल के अंदर की खूबसूरती को पिक किया। तो यकीन कीजिए कि ये शख्सियात ऐसी शख्सियात हैं कि आप इनका साथ मांगें, ये है माला बरार, ये वो लोग होते हैं कि जो खुद भी कुछ करते हैं और दूसरों से भी करवाने की पूरी कोशिश में करते हैं। और फिर इनकी ये खूबी कि ये लोगों को चूंकि देखिए ना डिस्कवर कर लेते हैं तो लोगों के ये हर दिल अजीज होते हैं, लोगों को ये यकीन होता है कि ये शख्सियत हमारे साथ मुखलिस है, चाहे वक्ती तौर पे वो इनके ऊपर तनकीद करें ना, बुरा तो लगता है इंसान को, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं ये बात मुझे आज तक किसी और ने क्यों नहीं बताई, मैं तो इतने लोगों में काम करती हूँ, मैं इतनों में हूँ, मैं ऐसे आंखें खोलती हूँ पट पट करके, मुझे किसी ने क्यों नहीं कहा कि थोड़ी आंखें कम खोलिए, मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ, किसी और ने मुझे क्यों कहा है कि आप ज़रा आहिस्ता बोला करें, आप ज़रा स्लो हों। तो लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, गो के वही बात है कि अलहक मुर्रा, हक कड़वा होता है, ये कभी किसी के साथ लगी लिपटी नहीं रखते। ये भी लिख लीजिए कि डेवलपर्स कभी झूठी तारीफ भी नहीं करते और झूठी तनकीद या बुराई भी नहीं करते, तो गोया के इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके साथ भी कुछ मशवरे ले लेते हैं, दे देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इनकी खूबियाँ जो हैं उसको बहुत अच्छी तरह पेश किया जाए, और इनके अंदर भी कुछ खामियाँ होंगी तो उनको बेहतरीन तरीके से रखा जाए। तो पहली बात है कि इनके लिए ऐसा कैरियर बेहतर है जिसमें ये दूसरों से काम लें, यानी ये काम करने वाले बिल्कुल नहीं होते, ये भी लिख लें, यानी ये काम करने से ज़्यादा काम करवाने वाले होते हैं, और ख़ास तौर पे इनको वो काम करना चाहिए कि जो दूसरों के मसाइल हल करें, सुलह करवा दे, रिश्ते करवा दे, किसी को जॉब दिला दे, किसी की कोई एप्लीकेशन आगे पहुंचानी है, कोई ऐसा काम फैमिली का, ख़ानदान में या किसी मोहल्ले में, इलाके में, गवर्नमेंट लेवल पे बात करनी है, कहीं जाना, इनको आगे कर दें। ये बड़े सलीके तरीके से बात को पेश भी कर देंगे, और अमूमन ऐसे लोगों के बारे में एक कॉन्सेप्ट होता है लोगों का, आप करते हैं तो हो जाता है, हमसे तो नहीं होता। तो ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ भी होती है, और वही बात है कि जिसको दूसरे की इतनी बारीकियां दिखेंगी क्या उसको अपनी नहीं दिखेंगी। ये भी अपना भी एक एक बाल खाल देखते होंगे या अपनी भी एक एक चीज़ को नोट करते होंगे, और आप इसका एक जो हम हर जगह छोटे छोटे नाम दे रहे हैं ना, किसी को हमने क्या पिछले पढ़ते हुए कहा कि मसलन ये बड़े लकीर के फकीर हैं या कुछ है, आप इनको लिख लीजिए ये मुतासिर कुन लोग हैं, यानी पीपल आर इम्प्रेस फ्रॉम देम। और इस पर हमने पिछले रमज़ान के बाद मेरा ख्याल है फ़ौरन ही एक आध बहुत ही प्यारी सीरीज़ भी की थी इसी मौजू पे कि यू आर इम्प्रेस्ड और यू आर बीइंग इम्प्रेस्ड, यानी आप किससे मुतासिर हैं, ये तो आप बहुत लंबी लिस्ट देंगे, क्या आपसे भी कोई मुतासिर है। तो ये लोग मुतासिर कुन लोग होते हैं और मोटिवेटर होते हैं, इनको ट्रेनर्स बनना चाहिए, इनको मेंटोर बनना चाहिए। किसी भी तहरीक का मेन शख्स जो लोगों के अंदर हरकत पैदा कर सके वो ये लोग काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगर आप इन लोगों को कहीं अपनी ऐसी कोई जगह पे विजिट करवाएं, मसलन अब कोई मर्द है तो वो किसी के बिजनेस को चेक करे कि उसमें क्या फ्लॉज हैं, कारोबार क्यों नहीं चल रहा, या कोई इदारा है, इंस्टीट्यूट है, यानी ऐसे लोगों से आप फ़ायदा ले सकते हैं कि ज़रा हमारे इस काम पे एक नज़र डालिए, हम ये जो काम कर रहे हैं ये अच्छा भी है कि नहीं है। फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इन लोगों से फ़ायदा लेंगे ना, तो आपके अंदर चूंकि मुखलिस हैं, इनका ज़ाती नफ़ा नुकसान नहीं है किसी में, लेकिन ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद देंगे, और आपके लिए ये किस्म का कह लीजिए कि बहुत बड़ा एसेट साबित होंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ऐसे लोग चूंकि हर बंदे की बात पे ओके कहने वाले होते हैं, तो इनका ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, कभी कभी ये ओवर कमिट कर देते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों में ना बैठे कि जो बहुत मशक्क़त तलब हों और बहुत ज़्यादा तनकीद वाले हों, नक्स निकालने वाले हों, क्योंकि इनके मिजाज और गुफ्तगू से फिर ऐसे लोगों को कोफ्त भी होती है और मायूसी भी होती है। तो इनके लिए बेहतरीन चीज़ जो एज अ प्रोफेशन है वो कोचिंग है, उस्ताद बन सकते हैं, टीचर, पब्लिक रिलेशंस में, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बन सकते हैं, ये वो हैं जो फंड रेजिंग में जाएंगे तो $5 लाख ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह ये मुआलिज बने अगर, यानी अगर ये डॉक्टर बन जाते हैं तो ये अपने मरीज़ की आधी बीमारी सिर्फ अपनी बातों से सही कर सकते हैं, और इनको मैनेजर के दर्जे पे पहुंचना चाहिए। अब आप देखिए कि सुनते पढ़ते वक्त हम सबका ही नहीं दिल कर रहा कि हम यही बन जाए। अब आप कहते हैं मैं पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, पता नहीं मेरे अंदर ये कैफियत है कि नहीं, दुआ कीजिए, कमी ढूंढिए, आप दूसरों को कॉपी कीजिए। अगर आपने कुछ भी बनना है ना, तो आप उसको कॉपी करना शुरू कर दें। इस कॉपी में कोई गुनाह की बात नहीं है। आप किसी एक ऐसी शख्सियत को वर्ल्ड वाइड देख लें जो अप्रोचेबल है, जो नहीं है, आप उसके बारे में खोज लगाएं, उनकी ज़िंदगी कैसे है, वो क्या मामला करते हैं, किस तरीके से उनका ये मामला होता है, आप देखेंगे कि आपके लिए भी ये सारी चीज़ें अचीवेबल होंगी। और इसी तरह से आप देखिए कि जब आप इस तरह से डेवलपिंग का काम करते हैं, तो ऐसे लोग मुल्कों का मुकद्दर बदलते हैं, ये कौमों का मुकद्दर भी बदल देते हैं। ये लोग हालात और वाकयात का रोना नहीं रोते, ये हर वक्त मजबूरियों के नाम पर नहीं फंसे रहते, वो ये नहीं कहते कि सब क्या कर रहे हैं, इनके अंदर इतना, जैसे आप लफ्ज़ तामीर सोचे ना, और अगर आपकी उर्दू ज़्यादा ही अच्छी है तो तामीर में क्या छुपा हुआ है, क्या रूट होगा, आइन मीमरा अमरा अमरा या मरु इन्नमा या मरु मसाजिद अल्लाही, आबाद करने को कहते हैं, यानी तामीरी शख्सियात जो है ये आबाद करती हैं, यानी किसी जगह की वीरानी है कि वहाँ से कोई ऐसा शख्स निकल जाए। अगर आपकी अपनी टीम में कोई ऐसा एक शख्स है जिसका माइंड हर वक्त वो ताने बाने बुनता है, तो आप उसकी कदर कीजिए। और आप देखेंगे कि ऐसा एक शख्स बाज़ दफ़ा उम्मत बन जाता है, जैसे कि काना उम्मतन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सूरह नाहल में अल्लाह ताला ने उनको एक टाइटल दिया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अपनी जगह पे एक पूरी उम्मत है, पूरी उम्मत मिलकर जो काम नहीं कर सकती वो एक काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। और लिख लीजिए कि सारे के सारे अंबिया कराम इसी पर्सनैलिटी से मुतल्लिक थे कि जिसमें तामीर। और आप सोचिए कि तामीर का ऑपोजिट क्या है, तखरीब। तखरीब कारी कहते हैं ख़राब करना, तो ये लोग चूँकि तामीरी सोच के होते हैं ना, तो ये तखरीबी चीज़ों में नहीं रह सकते। बस अगर आप देखिए कि किसी जगह कोई चीज़ ख़राब हो रही है, डिसऑर्गनाइज्ड है, टूटी फूटी है, ये वहाँ खुश नहीं रहेंगे। तो बहरहाल इस पे और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम नेक्स्ट पे मूव होते हैं। और नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो आपके मेरे लिए अपने अंदर झांकने के लिए है वो क्या है, नज़्मो ज़ब्त पर सख्ती से अमल करने वाले, डिसिप्लिन के लिए जुनूनी शख्सियत, मैडली कीन अबाउट डिसिप्लिन। ये शख्सियत कौन है जो हर वक्त घर को हॉस्टल बनाए रखते हैं? इनको माँ से ज़्यादा एक वार्डन होना चाहिए, बीवी से ज़्यादा ये किस्म की सर पे मुसल्लत एक ऐसी खातून है कि जो घर आते ही मर्द को कहे जूते इधर रखिएगा, मोज़े उठाकर इधर रखिएगा, यानी हर वक्त बस अप डाउन, 1 2 3, हैंड्स अप हैंड्स डाउन। ये शख्सियत जुनून की हद तक डिसिप्लिन को कायम करते हैं, लोगों को नहीं इंजॉय करते सिर्फ इसलिए कि ये आ जाएंगे तो हमारे घर के सोफों के कुशन हिल जाएंगे। यानी ये ऐसे लोग हैं, ये चाहते हैं हर चीज़ पहले से बताई जाए जी, कौन आएगा, कितने आएंगे, कितने बजे आएंगे, बच्चे साथ आएंगे कि नहीं, खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। यानी ये ऐसे टिक टिक टिक, ये करना है ये करना है, अच्छा ज़रा यहाँ वैक्यूम कर दें, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती क्योंकि इस पूरे कमरे में वैक्यूम करने में 15 मिनट लगेंगे और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, मैं कल करूँगी। ये टोन होती है इनकी, यानी ये कहते हैं कि हमें हर चीज़ की पहले पेशन गोई हो, जैसे प्रिडिक्शन पहले हो। इसीलिए आप देखिए कि ये लोग अपने मामलात और अपने कामों को बहुत मुरतब यानी तरतीब से, मुनज़्ज़म यानी नज़्म व ज़ब्त के साथ और मंसूबे के साथ यानी प्लानिंग के साथ चलते हैं। और फितरतन ये लोग चाहते हैं कि दुनिया पर और सबसे पहले अपने करीब तर लोगों पर, वही बात है, बीवी है तो शोहर और घर वाले, माँ है तो बच्चे और इसी तरह बाप है तो वो कहते हैं मेरे घर जो है ना एक किस्म का थाना हो या एक हॉस्टल हो जिधर हर चीज़ के टाइम टेबल लिखे हों, एक निज़ाम मुसल्लत कर दिया जाए ताकि तमाम लोग इसी पर अमल करें। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों के साथ रहना, सच्ची बात कह रही हूँ। मेहमान इनके घर जाने से कतराते हैं, क्या फ़ायदा, वहाँ जाते ही पहले ही हमें चेक करना शुरू हो जाएंगे कि यहाँ बैठे अच्छा हाथ साफ़ किए, अच्छा ये कर लें। और इन लोगों की एक खूबी कह लीजिए या आदत है, रूटीन पे चलते हैं। ये लोग रूटीन के मुताबिक काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, अपने गोल्स के बारे में बहुत हसास होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, तारीखों पर बड़ी ख़ास तवज्जो होती है, इनकी डेट क्या है, पहले ये लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं, तवील मुद्दती प्लान्स कह लीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको शॉर्ट टर्म प्लान्स में तकसीम करके पूरी जान लगाकर उस पर काम करते हैं। यानी कह लीजिए कि ये किसी प्रोजेक्ट में अपना 100% दे आते हैं, खाएं ना खाएं, सोएं ना सोएं, ये सारी रात भी जाग लेते हैं क्योंकि इन्होंने किसी को कह दिया है मैंने ये काम करना है तो ये करते हैं। अब ये बातें अच्छी हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन लोगों में रहते हुए कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आता है। और इन लोगों की जो एक नेगेटिविटी है कि ये लोग गैर मुतवक्के हालात और नागहानी हादसात से बहुत घबराते हैं, यानी दे आर नॉट पीपल ऑफ एमरजेंसी, दे आर नॉट पीपल ऑफ एडवर्सिटी, गलती ज़रा सी किसी की हो जाए सर से पाँव तक आग बगुला हो जाएंगे, मामूल से हटकर ज़रा कुछ किया जाए तो बुरा मानने लगते हैं क्योंकि इनके ख्याल में अगर एक इंसान डिसिप्लिन इख्तियार करे तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन याद रखिए कि इस दुनिया में हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के साथ नहीं चलेगी, तरतीब के मुताबिक मर्ज़ी के ताबे नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि एक तिनका ना गिरे आपके कारपेट पे, लेकिन आप बाहर जाकर देखिए दरख्त के नीचे सैकड़ों पत्ते गिरे होते हैं, आप क्या करेंगे? फितरत का असूल देखिए कि अल्लाह की इस कायनात में कितना फल लगता है। कल परसों में जैसे इत्तेफाक हुआ, मैं जहाँ मैं थी तो उस घर के बैकयार्ड में एक बड़ा खूबसूरत सा पार्क यानी गार्डन है और मैं उस गार्डन में वॉक करते हुए बिल्कुल आखिरी कोने पे चली गई। अच्छा जब मैं वहाँ गई तो आप देखिए कि वहाँ दूर से भी मैं रोज़ ही देखती थी लेकिन ऐसे लगता था कोई झाड़ है ना बड़ा सा, करीब जाके देखा आपको तो वो क्या थी, वो बेरीज थी। सेंसबरी में उसकी इतनी सी डिबिया, सात आठ बड़ा रहा खाते 20 दाने होते होंगे, तो मेरे ख्याल वो 3 पाउंड से ज़ायद की आती है। अच्छा वो वाली थी, एक तो होती ना पूरी बेरी, रेड बेरी है और एक चेरीज है, वो नहीं, वो जिसकी शक्ल थोड़ी सी पाकिस्तान के अंदर, वो एक बड़ा नायाब सा फल है, उससे मिलती है, किसी को याद आए तो मुझे आप बता सकते हैं। फाल सा भी एक होता है नहीं, ये छोटे छोटे मोती मिले होते हैं, शहतूत, जी रॉसबेरीज होंगी ये, यानी शहतूत तो लंबे लंबे होते हैं ना, ये शहतूत की तरह छोटे 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 मोतियों की तरह, यकीन करें कि वहाँ से लेके इतना बड़ा कोना घर का पूरा बैग पे इसका झाड़, और उस पे इतना फल, मेरी तो चीख निकल गई, कुछ पके हुए काले और बेशुमार ग्रीन और रेड, और मुझे नहीं लगता कि घर वालों को भी पता होगा, खैर मैंने उस वक्त देखा, मैंने कहा ला, मैं तो किसी के किचन में इतना सा फल का टुकड़ा भी ज़ाया होता या बिन में जाता देखूँ मैं तो परेशान होती हूँ, अल्लाह जी ये आप ही हैं, यानी मैंने अल्लाह से दो बातें की कि अल्लाह ताला ये अब इधर ही पकना है, इधर ही गिरना है, और वो मैं पूरा एक रफली स्पीकिंग मैंने गैस कर लिया, ये सारा फल अगर केयर के साथ उतरे और इसको किसी स्टोर में बेचें तो मेरा ख्याल ये 1,000 पाउंड से भी ज़ायद होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा था। खैर मैंने घर आकर पूछा जिनका घर था, मैंने कहा आपको पता है बैग पे क्या, हाँ हाँ वहाँ वो है, मैं अक्सर बेटे को कहती हूँ जाओ उतारो, मैं तुमको पता था, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक मेरे लिए अच्छी खबर थी कि उनको पता तो है, लेकिन मैंने उस वक्त जो बात आपको भी बता रही हूँ, कायनात में कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्पोज होंगी, फल कच्चा गिरता है या पक्का गिरता है आप देखते हैं, लेकिन अल्लाह ने ज़मीन को इतना अमीन बनाया है, इतनी ज़मीन माशाल्लाह बामानत है कि वो बेरीज का जो फल जाना है ना, उसने बाद में खाद बन जाना है, हम तो बिन में ट्रैश करते हैं ना, लेकिन कायनात में पत्ते जितने, आप नॉर्वे में देखिए ऑटम आता है, एक एक पत्ता गिन के दरख्त से गिरना है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब स्नो आनी है वो पत्ते स्नो में दब जाने हैं, जब 4-6 माह बाद स्नो चली जाती है वो पत्ते सब ज़मीन की खाद बन चुके होते हैं। तो अब ये लोग क्या चाहते हैं कि एक पत्ता भी नीचे ना गिरे, एक चीज़ भी ज़ाया ना हो, तो ऐसे लोग जो है ना एक नामुमकिन चीज़ की कोशिश में होते हैं कि मुकम्मल तौर पर हालात इनके कंट्रोल में रहें, और बाज़ लोग जो इनसे अपोजिट होते हैं, अब मिसाल दीजिए ना आप किसी ऐसी खातून के घर अपनी बेटी को ब्याहते हैं, देखिए यहाँ आप ज़रा से इस टॉपिक को समझें, कल मुझे किसी ने एक मैसेज भी किया कि हमें ऐसे लग रहा था आपके लेक्चर में, यानी फीडबैक था किसी का कि हमें ऐसे लग रहा था कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा माजरत के साथ हम साइकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, इसी को साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी का जो मेन ब्रिक है वो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, साइकोलॉजी में इंसान ही के तो अंदर झांका जाता है, तो वो कहने लगी मेरी बड़ी देर बाद ख्वाहिश पूरी हुई, मुझे बड़ा शौक था कि मैं साइकोलॉजी पढ़ूँ, ये भी किसी का फीडबैक था, तो याद रखिएगा कि ऐसी सास किसी बेटी को मिल गई आपकी, आप या आपकी बेटी ऐसी क्रिटिकल है तो आप तो कहेंगे जाओ अपने घर, लेकिन जिनके घर जाएगी उनको वक्त डाल देगी, ऐसे लोग वक्त डालने वाले होते हैं, अपनी जगह खूबियां होती हैं लेकिन ये लोगों को इनके साथ रहना अमूमन कैद लगती है। अच्छा ये अपनी जगह अच्छे हैं, मज़े की बात देखिए आप जितनी पर्सनैलिटीज़ भी पढ़ेंगे ना 100% कोई गलत नहीं, 100% कोई भी ठीक नहीं है, किसी में रेशो ज़्यादा है लोगों में खुश रहने का, किसी में कम, अब जो लोग ऐसे हैं आप देखिए इनको इनकी पसंद का काम दे दें वो लगे रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ यानी अगर आपको रहना पड़े तो क्या करें, लोग कहते हैं कि इनको जुनून है, सफाई का जुनून कह लें, ओसीडी कह लें, जो मर्जी कह लें आप लोग, मिसाल है कि ये अपने घर किसी को दावत पे बुला लें और अगर इन्हें कह दिया ना कि देखिए 7 बजे आइएगा, और अगर 7 बज के और 1 मिनट हो गया तो इट्स ओके, 10 मिनट हो गए तो मेरे डोर्स क्लोज होंगे, और डोर ना भी के कहते मैंने खाना सर्व कर देना, लोग नहीं खुश होते, या तो लोग डर से 6 बजे पहुंच जाएंगे तो ये कहेंगे आप पहले क्यों आ गए, अभी तो मेरा किचन भी नहीं साफ हुआ, और अगर आप पूरे वक्त पे पहुंचने के शौक में निकल पड़े लेकिन ट्रैफिक में फंस गए तो आखिर में आपको क्या होगा, अल्लाह बेइज्जती से बचाना, अल्लाह बेइज्जती ना हो जाए, अल्लाह बातें ना हो, तो ये लोग जो होते हैं इनके साथ लोगों का रहना मुश्किल सा होता है, लेकिन अगर आप देखें तो अगर ऐसे लोग दुनिया में ना हो तो कोई फ्लाइट टाइम पर ना पहुँचे, कोई ट्रेन वक्त पर ना आए, तो चीज़ों का ऑब्सेसिवली बहुत बढ़ जाना और ऑब्सेशन हो जाना ये भी कभी कभी ठीक नहीं होता, इन लोगों को चाहिए कुछ मशवरे भी दे देते हैं हम खुद ऐसे हैं या कोई और है, तो पहली बात है कि थोड़ा सा इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, इनको ये याद रखना चाहिए कि हर बंदे का अंदाज़ जुदा जुदा होता है और हर बंदा अपने अंदाजे के मुताबिक काम करता है तभी वो बेहतर कारकर्दगी दिखाने के काबिल होगा। बस आप देखिए ऐसी सास है, उसने बहू को कहा बेटा आप सलाद बना ले, मैंने 2-4-6 खाने बना लिए, अब सैलड बना, अच्छा साथ ही हिसाब लगा लेंगी कि मैंने इनको 6:49 पे ये काम दिया है तो एक ना 7:15 तक ये सलाद की 2-4 बड़ी डिशेस बना के बैठी होंगी, अब वो अम्मा जी चली गई अंदर हाँ वो 7:15 पे इस उम्मीद पे आई कि चार बड़ी प्यारी डिशेस तैयार होंगी। देखा तो वो बहू ने तो सारा कुछ फैलाया हुआ है, किचन का काउंटर भी भरा हुआ है, बस कहेंगी पीछे जाओ तो मैं काम नहीं करना आता, मैं खुद कर लूँगी। यानी ये लोगों के साथ उनकी जो ये कहना चाहिए कि माइंडसेट या उनकी कैपेसिटी के मुताबिक बहुत कम चल पाते हैं। तो बहरहाल ऐसे लोगों को क्या चाहिए, पहली बात है कि अपने अंदर थोड़ा सा ये अंदाज़ा लाएं कि अल्लाह की ज़ात परफेक्ट है। एक लफ्ज़ परफेक्ट बहुत लोग बोलते हैं, परफेक्ट है आज बिरयानी, परफेक्ट है केक, परफेक्ट है, उसी दिन देखिएगा जलेगी बिरयानी या चावल ढीले होंगे। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह सुबहाना ताला जो है वो सुबहान है। तो इनको चाहिए कि हम कभी परफेक्शन के लेवल पे नहीं पहुंच सकते। अगर ऐसे लोगों को अपने लिए कैरियर ढूंढना है, या आपका कोई बच्चा ऐसी तबीयत का है, जैसे मुझे याद है ऐसी माएँ हैं वो कहती सबको खाना खिलाना आसान है, इसको मुश्किल है, इसने पुलाव में से एक एक जीरे का दाना चुनना है, काली मिर्चें चुननी है, आप मामा ये क्यों डालती, अदरक की फांस क्यों आ गई, अब माँ परेशान है कि इसको मैं किधर ले जाऊँ। तो वो फिर पिकी होते हैं ऐसे बच्चे, आप देखेंगी जो बच्चे अपनी माओ के साथ पिकी होते हैं, कल बाद में वो अपनी बीवियों के साथ भी बहुत पिकी होते हैं। तो आप ऐसे बच्चे को कहाँ डालें, लॉयर बना दें, जहाँ कवानीन और निज़ाम का निज़ाम बहुत नपातुल्ला हो इनको वहाँ जॉब दिलाइए, ऐसा इदारा जहाँ की पॉलिसी बड़ी क्लियर हो। ये फ़ौरन स्टबन हो जाते हैं, इनके नाम के साथ स्टबन लिख लीजिए, बहुत जल्दी स्टबननेस में आ जाते हैं। फिर इसी तरह अपने कामों और चीज़ों को 2 से 4 मरतबा चेक कीजिए और यकीनी बनाइए कि हर चीज़ 100% दुरुस्त चल रही है। बस आप इनको लाकर बिठाएं और नेट ना चले, फिर माइक काम ना करे, फिर इसी तरह से एक दो और हिकअप्स हैं, वो कहेंगे नहीं बस अब हमारा मूड नहीं रहा, बस अब फिर कल किसी दिन फिर बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह फिर टाइम मैनेजमेंट इनकी वीक हो जाती है। वजह क्या है कि वो चीज़ की नोक पलक में ऐसे जाते हैं। तो इनको टाइम मैनेजमेंट का फ़न सीखना चाहिए ताकि मौजूद वक्त में और ज़्यादा काम कर सके। फिर इसी तरह से आप याद रखिए कि ऐसा नपातुल्ला निज़ाम तश्कील दिया जा सकता है जो इनके माइंड के मुताबिक हो। यानी पहले आप इनका माइंड लेकर पढ़कर इनको ऐसा ही कोई काम दीजिए कि जो फिर ये इंजॉय भी करें। और ये भी मान लीजिए कि आपकी टीम के बाकी लोग इतने डिसिप्लिन के मुताबिक काम नहीं करेंगे, तो अगर आप खुद ऐसी हैं तो आपको अपनी टीम से 10 to 20% गड़बड़ों का, कमी बेशियों का मार्जिन देना चाहिए। आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कुछ ना कुछ कमी तो होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 80% तो है ना, और सबसे बड़ी बात है ना, अगर ये होते ही ना तो मैं 80% भी खुद कर सकती थी कि नहीं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इनको लोगों की सलाहियतों को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ इनके माइंडसेट के मुताबिक नहीं होती तो अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करके दूसरों को इसके साथ तैयार कर लें। फिर इसी तरह इनको एक चीज़ पे काम करना चाहिए कि आप अपने मिजाज की वजह से छोटी गलती पर फौरन गुस्से में मत आइए, वरना क्या होता है कि किसी भी इदारे में दूसरे लोग जो हैं वो आपको पॉइंट करेंगे और आप एक किस्म का निशाना बन जाएंगी। यानी जैसे हर बंदे के नाम के साथ कुछ लफ्ज़ आता है ना, तो लोग कहेंगे ना 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 उनको ऐसा ना करें। फिर एक और इनके लिए मशवरा ये है कि अपने अंदर सब्र और तहम्मुल पैदा कीजिए, आपके अंदर जितना बर्दाश्त का मादा हो सके उसको लाइए। और इनको क्या करना है, सबसे पहले हवाई जहाज़ का पायलट बना दें, क्योंकि वहाँ सुइयों पर चल सकते हैं आप, अदरवाइज नहीं। ये कार्डियोलॉजिस्ट बहुत अच्छे बनेंगे, यानी दिल के डॉक्टर, लेकिन असली दिल या फिल्मों वाला दिल नहीं। फिर इसी तरह आप देखिए ये न्यूरोलॉजिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं, दिमाग के सर्जन। हमारी एक सिस्टर हैं तो उनके बेटे न्यूरोलॉजिस्ट है, तो मुझे वैसे ही बड़ा शौक है ऐसी चीज़ों को पढ़ने का, तो कभी बात हो तो वो अपने बेटे से जो सुनती हैं फिर मैं उनसे सुनती हूँ, तो मेरा दिल करता है कि मैं अंदर से दिमाग देखूँ। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक दो पिक्चर्स दिखाई कि जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं ना, जब वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे आप लोगों ने ग्लासेस लगाए हुए हैं, इस ग्लास के अंदर डिफरेंट छोटे 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 और भी शीशे होते हैं, मतलब उनको सिखाया होता है कि आमतौर पे आप ऐसे देख रहे हैं, फिर आपने जब उसकी फर्स्ट लेयर काटनी है तो आपने इसमें से देखना है अंदर से अंदर, यानी जब बिल्कुल वो अंदर से वो जो आपको होता है ना नर्व्स होती हैं पतले पतले था उस वक्त देखना है, तो किसी और से देखना है। मैंने कहा वो ये तो बड़ा अच्छा है, मैंने उनको बड़ी दफ़ा कहा है कि मुझे कभी ले चलें मैं ऑपरेशन करते हुए देखूं, पर इजाज़त नहीं होती आपको पता है, तो लेकिन ये कि आई वुड लव टू, दिमाग तो सबका ही दिल करता है ना ठीक करने को कि मैं आपका दिमाग ठीक कर दूं। तो बहरहाल ये न्यूरोलॉजिस्ट बने, यानी देर कीन, बहुत सॉफ्ट है। फिर इनको अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती होगी, वो करनी चाहिए। आपको अगर अपने कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में काम देना हो अकाउंट्स का, तो इनको दीजिए, ये आना पाई बराबर करेंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके अकाउंट्स को मैनेज करेंगे। फिर इस तरह ऑडिटिंग का काम दीजिए इनको, आप जानते हैं कि ऑडिटिंग कितना सेंसिटिव काम है। ट्रैफिक कंट्रोल बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आप देखें कि रेड ब्लू येलो, रेड ग्रीन येलो का एक हिसाब किताब होता है। 19-20 कोई एक 10 सेकंड पहले भी चल पड़े रेड लाइट के ऊपर ही, तो हादसा हो जाएगा। फिर इसी तरह टैक्स स्पेशलिस्ट और इसी तरह फौजी डिसिप्लिन, ये सब काम इनके लिए बहुत अच्छे हैं।